मनुष्याणां सहस्त्रेषु तस्य जगति सिद्धये सिद्धानाम् अपि मुक्तानां कश्चिन् मां वेदतत्त्वपर। साधारण मनुष्य में कोटि कोटि लोगों में से कोई एक आदमी सिद्ध होता है और ऐसे कोटि कोटि सिद्धों में से कोई एक आदमी तत्व से मुझे जानता है। और भी भागवत या गीता में भी ऐसा कहा गया, नारायण पारायण कोटिस्वपि महामुनि, इस श्लोक की ये सब आप लोगों को इस श्लोकों को याद करना चाहिए। कोटि कोटि लोगों में से कोई एक नारायण का उन्मुख व्यक्ति होता है सेवक, और कोटि कोटि नारायण भक्त में से कोई बिरले ही कृष्ण का भक्ति पाता है, और कृष्ण के कोटि कोटि भक्तों में से कोई बिरले ही ये सब विचारों को समझ सकता है। राधापद दास्य की लालसा कोटि कोटि कृष्ण भक्तों में बिरले मिलेगी। तो यहाँ इसी चीज का ये कुछ आभास दे रहे कृष्ण। राधापद दास्य का तो नहीं, अभी वहां से बहुत दूर है, अभी केवल सखर स्काय या ब्रज भाव का थोड़ा सा ये कुछ उसकी रूपरेखा कुछ ये वर्णन कर रहे हैं, जिसमें बतलाया कि शास्त्रों में प्रेमा भक्ति का कुछ तटस्थ लक्षण दिया गया है, स्वरूप लक्षण का वर्णन नहीं किया गया। और तटस्थ लक्षण का जो वर्णन किया गया, इसलिए जो कहा कि एवं व्रतस्व प्रिय नाम कृत्या जातानुरागो दुतचित्त उच्चै हसतथो रोदति रौति गायते नित्यति लोकवाणी। सनातन गोस्वामी में टीका में कहते हैं कि कहीं पर आग लगी हो, और जैसे कि इराक इत्यादि में बमबारी से आग लग रही है, और उस आग में मीलों तक का सभी कुछ भस्मीभूत हो रहा है, बड़ी बड़ी लपटें उठ रहा है, और 20-25 मील दूर से वो सब लपटें दिखाई पड़ रही हैं। भयंकर है ना, कितने पशु कितने आदमी उसमें जल करके खत्म हो जाएंगे। तो इतना वर्णन नहीं किया, कहा कि गांव में आग लगी थी और कुछ दमकलों ने आकर के उसे दिखा, बस इतना ही कहा। तो शास्त्रों में यहाँ पर जो कहते हैं रोदति रौति गायति
उन्मादवत्,
यहाँ पर उनके हृदय में कैसी भीषण आग लग रही है, इस श्लोक में वो वर्णन डर के मारे नहीं किया। आग की भयानक जो भयानकता थी उसको इसमें व्यास जी ने अथवा सुखदेव गोस्वामी ने जान बुझ करके छिपा दिया और कम वर्णन किया। और ये क्यों, जो कल बतलाया था लोगों को, अरे कृष्ण के भक्ति में जो आनंदमय कही जाती है इतनी भीषण दवाग्नि होती है, तो वो अच्छा है जिसमें आत्यंतक दुख निवृत्ति है वो चीज अच्छी है, जिसमें आनंदम अयम ब्रह्म, मैं ही वो ब्रह्म हूं और आनंद स्वरूप हूं और मुक्ति में आनंद मिलता है, यही चीज ठीक। उस दावालन में जलने की कोई जरूरत नहीं, साधन समय भी रो और सिद्ध अवस्था में और अधिक रो, और हृदय में इतना कोटि कोटि दावालन के आग की ज्वाला से भी अधिक इसमें ज्वाला होती है। यदि ये कोई जान ले तो कोई घर में कोई आएगा ही नहीं। इस डर से केवल कह दिया रोदती और यदि राधिका की चंद्रावली की पद्मा की ललिता विशाखा की कृष्ण के विरह की बात यदि यहाँ पर लिखते और भागवत में वर्णन किया जाता है। पागलनी का तो उदाहरण दिया ये पागल हो गई और पागल जैसा प्रलाप कर रही है यहाँ तक तो कहा, किंतु कैसे पागल कैसे हो गई इस चीज का वर्णन नहीं दिया। इसलिए कहते हैं ये भाई हमारे बड़े बड़े टीकाकारों ने भी और भागवतकार ने भी इसको छिपा करके रखा लोगों से। क्यों? साधारण लोगों को विपरीत बुद्धि हो जाती, जैसे गीता में कहा न कर्म बुद्धि
न भेद जनेत
कर्म बुद्धि जनेत कर्म संगीना। जो कर्मी हैं उनको ये मत कहा जो कर्म छोड़ दो, विवाह मत करो, माता पिता का माता पिता कौन, भाई कौन, ये मत कहो, कहो माता पिता का आदर करो। बड़ा भाई भी पिता के समान है। स्त्री जिसका हाथ पकड़ा है जीवन तक निर्वाह करो, पति ही परमेश्वर है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये सब चीजों को बताया। उनको ये मत कहो कुछ, देखो ये सब छोड़ छाड़ करके भगवान का भजन करो तो वो क्या करेंगे, माता पिता को छोड़ देंगे और भाई बंधु को छोड़ करके व्यभिचार में रत हो जाएंगे, बड़े निशक हो जाएंगे और सब धर्म कर्म सब छोड़ और भक्ति तो करेंगे नहीं। इसलिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। इसलिए जो साधक हैं जो भजन कर रहे हैं भक्ति, उनको भी विरह की ये बातें जो प्रेम में होती है ये बतला, क्यों वो छोड़ देंगे। इसलिए यही कहो जय आत्मा, इसलिए उन्होंने भागवत में कह दिया जय आत्मा, किंतु बात कुछ और ही है। इसलिए नारद जी इनको नहीं बतलाना चाहते और ये सुनना चाहते हैं, और थोड़ा सा जब भी बतलाया तो कल उदाहरण मैंने दिया रत्नों की पेटिका में यह महा दुर्लभ चिंतामणि के रूप में ये उपदेश दिए गए, कृतार्थ हो गए। कौन क्यों अब इसके लिए योग्य होकर के अब वहां तक पहुंचे हैं बैकुंठ में, किंतु मन नहीं लग रहा था और समझ नहीं रहे क्यों मन नहीं लग रहा। अब उनका वहां तक बैकुंठ तक अधिकार हो गया है और उससे ऊपर जाने का अधिकार हो रहा है, इसलिए थोड़ी थोड़ी उसकी सुगंध छोड़ रहे हैं। जैसे सुगंध से उस वस्तु को जो कहाँ से सुगंध आ रही है वो उनको पता लग गया है, उसके लिए थोड़ी थोड़ी सुगंध केवल छोड़ रहे हैं। इसलिए कल बतलाया था कि प्रेम भक्ति का जो परिपाक अवस्था है वो उसका निरूपण करने में मैं भी समर्थ नहीं और किसी का भी कोई भी समर्थ नहीं। और तत्त्व लक्षण के द्वारा जो बतलाया गया है वो भक्ति तत्व भक्ति शास्त्र का विरोधी हो जाता है, वो तो कल विरोध के संबंध में बतलाया। साधारण शास्त्रों में जो लिखा है ठीक, भक्ति का परिपाक जो प्रेम है वो एकदम विपरीत हो जाता है। कैसे? शास्त्र में कहा जो भक्ति कैसी है, भक्ति रे मनंगयति भक्ति वसो पुरुषः भक्ति रे वो भूयसी इत्यादि बताया। भक्ति आनंदमय है और ये भक्ति भगवान के पास में आनंदमय पास में ले जाती है। और लेकर के भगवान के चरणों के साथ उसका मिलन करा करके उसके जीवन को आनंदमय बना देती है। जहां भी है ऐसा सब वर्णन किया, बड़ी आनंदमय है, बड़ी आनंदमय है। और जब श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद का भ्रमर गीत इत्यादि पढ़ते हैं और विशेष करके गोस्वामियों के चरित्र जबकि ग्रंथों को पढ़ते हैं तो बात कुछ उल्टी थी। कृष्ण जब से गए, जब से गए श्याम
घनश्याम गयो ब्रज से,
जब से गए हैं ना, तब से राधा जी की और गोपियों की क्या दशा, कैसी दशा थी, इसका वर्णन करना पड़ता है। वर्णन नहीं किया जाए उनकी क्या दशा थी, किंतु उसमें कल बतलाया ना ये उसमें कुछ कुछ आनंद है, कुछ कुछ क्या, वो आनंद ही है और आनंद का ही, आनंद की ही एक लहर है ना? उसके आनंद की एक लहर है जो ऐसे देखती है। पानी एकदम सीधा साधा है और उसमें लहर कैसे होती है, टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची, और आदमियों को बहा ले जाएगी। ऐसे ये विप्रलम्ब के ये सब भाव है, प्रेम की तरंगे ये सब हैं। जिस समुद्र में प्रेम कोई तरंग नहीं वो समुद्र कैसा, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भक्ति के विषय में शास्त्रों के वचनों में और उनके उदाहरणों में कुछ विपरीत भाव हो जाता है। ये सब मैंने बतलाया था। तब भाव उत्कर्ष माधुर्य विदुष तद रसेन सेवित सेविन तत्रत्य त्वमपि ज्ञास्यसि अचिरात् तत्प्रसादतः। मैं क्या बतलाऊं, जैसे अभी तत्रायण जी ने कहा गिरा अनयन पानी में नैन नहीं और नैन में पानी नहीं, तो दोनों नहीं वर्णन, आंखें न वर्णन कर सकती हैं और न जीवा देख सकती है, तो ये ठीक ऐसा ही कहा। वो कह रहे हैं ये जो भाव है प्रेम का परिपाक, प्रेम का परिपाक दो प्रकार से, एक संभोग और एक प्रणय, दोनों ही उसके परिपाक। विशेष करके गुड़ से जब की बनाते हैं ना, चीनी बनाते हैं तो क्या करना होता है, पकाने के लिए क्या करते हैं, नीचे चूल्हे के नीचे आग लगा देते हैं लकड़ी, और बड़ी जोर से वो जलती है और रस को उस पर रख देते हैं, और धीरे धीरे क्या करते हैं, एक लकड़ी का बना करके रखते हैं चलाने के लिए, फेन होता जाएगा और फेन को मैंने मैल को हटाते जाएंगे और उबलते उबलता रहेगा। ऐसे नहीं होगा, बिना जलाए हुए तपाए हुए परिपाक वो होगा ही नहीं। पाक होने के लिए जितना ही पाक होगा, चीनी भी परिपक्व होने के बाद उसको फिर से गलाना पड़ेगा तब वो उसी को उत्पल होगा, ऐसे नहीं बन जाएगा वो सब। वैसे ही प्रेम कब निखरेगा, विप्रलम्ब से, विप्रलम्ब की आग से वो निखरेगा। राधा और कृष्ण दो हैं, विरह की आग पर दोनों को चढ़ा दिया गया, दोनों द्रवित हो गए, अब द्रवित हो के दोनों मिल गए, और मिलने के बाद में जब दोनों मिल गए ना, फिर उसमें प्रेम का रंग उसमें डाल दिया, अब तब वो मिल करके क्या हो गया, उसी को रसराज महाभाव कहते हैं, जो सर्वोत्तम भाव है, बिना ताप के नहीं हो। हम लोगों में भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बड़े आनंद से हैं, कहाँ भक्ति है। यदि थोड़ा सा ताप होता राधा कृष्ण के लिए दर्शन की ऐसी लालसा होती, हृदय में अनुताप होता है और वाणी भी वहां पर स्तब्ध हो जाती। अभी बतलाए हैं आंसू आएगा कब, जहां पर वाणी भी रुद्ध हो जाएगी और प्रेम की बाढ़ से हृदय के उस बांध को भी जब तोड़ देगी तब आएगा वो पानी। जब तक कि पानी नीचे स्तर पर है तब तक तो वो बढ़ेगा नहीं, या तो बांध को तोड़ना पड़ेगा नहीं तो उच्छ्वासित होकर के पानी ऊपर से आएगा। ऐसे ही हृदय की बांध माने धैर्य जो है वो बाणी टाणी सब रुद्ध हो जाएगी, स्तब्ध हो जाएगा और तब उसमें से ये जल के रूप में द्रवित होकर के वो भाव आएंगे। हम लोगों का अभी कभी कृष्ण के लिए कहां होता है, कभी भाव उच्छ्वास के लिए भावाभास के रूप में कभी कभी कुछ आ जाता है, वो भी जागतिक दृश्य कुछ मिलने से, नहीं तो कहां भी प्रेम कहां भाव। अभी परिपाक के अभी कभी गुड़ का रस भी नहीं निकला, ईख तेरी नहीं गई कोल्हू में, वो कैसे बनता है भाई, गन्ना का रस कैसे बनता है, आराम से बन जाता है, अपने आप निकल आता है रस तो न, कैसे आता है कोल्हू लोहे की और उसमें उसको दे दो और वो चिपट करके पीस देता है। अभी पिसाई हुई, अभी थोड़ा सा भी धन छोड़ने में, कुछ संसारिक भोगों को छोड़ने में तो ये दशा, प्रतिष्ठा छोड़ने में कैसी दशा। और जिस समय भगवान उस कोल्हू में फेरेंगे, अभी तो हम लोगों को भी इस योग्य देखा कि अभी ईख में अभी अंकुर हो रहा है, लगाते हैं ना काट करके, गंडे को काट करके लगा देते हैं, उसमें अंकुर हो रहा है, अभी पत्ता भी नहीं निकला है, अभी पेरने लायक हम लोग हुए ही नहीं, तो अभी हम लोगों पर अभी कहाँ ये सब चीजें हैं। पेरने लायक होगा जब उसमें रस हो जाएगा तब तो पेरेगा, अब तक फिर रस निकलेगा, तब फिर आग पर चढ़ेगा, भूख होगा। अभी बहुत दिल्ली अभी बहुत दूर है, इसलिए अभी प्रेम हम लोगों से बहुत दूर, इतना ही छोड़ते नहीं है, स्वार्थ के मारे लड़ाई झगड़ा निंदा बंदन, अभी तो अनर्थ ही नहीं जा रहा, अभी तो अंकुर भी प्रेम नहीं हुआ। तो इसलिए कहते हैं नारद जी, देखो उत्कर्ष और माधुरी है, इस भाव का जो उत्कर्ष है और माधुर्य है, केवल रस के ही जानते हैं जो इस रस को अनुभव किया है, और जो अनुभव करने वाला है वो बोल भी नहीं पाता, वाणी स्तब्ध और रुद्ध हो जाती है। बस उसको कैसे जाना जाता है, आंसुओं से, उसके नेत्र से जो आंसू गिरते हैं बस उसी को कोई पढ़ ले। राधा जी पत्र लिख रही हैं कृष्ण को, 6 बज गए, श्रीमती राधिका इज राइटिंग ए लेटर टू कृष्ण, एक लेटर लिख रही है। शाम को बैठी है? केले के पत्ते ले लिए या कोई कोमल पत्ता, और लाल फूलों का वो जो कलियां होती है ना अनार की, लाल लाल होती है, लेकर के मसल करके थोड़ा सा रस निकाल दिया और मोर पंख से उसको लिखना आरंभ किया। कौन लिखेंगी, प्रेम पाती लिख रही हैं कृष्ण के लिए, और कृष्ण लिखेंगे पहले संबोधन तो करेंगे ये कृष्ण, तो वो क की बिंदी यहाँ पर अभी दिया है, और जब ही उनका स्मरण करने लगी तो ये चित्त द्रवित हो गया, आंसुओं के बूंदों से वो भर गया, कह नहीं लिख सकते। और अंत में राधा प्यारी जी कृष्ण की चिंता करते तन्मय होते 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 भावावेश में कृष्ण बन करके, अब कृष्ण जो लिख रही थी अब वो कृष्ण बन करके सोच रही कि मैं अब कृष्ण हूँ, सोचे नहीं कृष्ण ही तन्मयता में बन गई और रो लिखने लगी। और रखते उनके विरह में तड़पते तड़पते आंसुओं के बूंदे कुछ आई और कुटकी एक बिंद दिया और सवेरा हो गया, कुछ नहीं लिख सके। सवेरा हुआ, ललिता जी ने उसी को बंद कर दिया और किसी धागा जैसा निकाल करके लाल पीले और निकाल करके और उसी से बांध करके कृष्ण के पास में पहुंचा दिया। और होता तो शायद नहीं पढ़ पाता उस पत्र को, तो कृष्ण जी ने पढ़ लिया कि नहीं, कृष्ण पढ़ करके और उनके भी आंसू उन आंसुओं पर मिल गए, दोनों के आंसू एक हो गए, कृष्ण भी विलाप करने लगे उस पत्र को पढ़ सकते हो। हमारी प्रति ऐसा प्रेम अद्भुत, वही कह रहे हैं यहाँ रस सेवी जो रसिक जन है वही दर्शकों की बातों को समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। यदि टिकाएं नहीं होती तो भ्रमर गीत का भी अर्थ, यहाँ पर कि गोपियों ने कृष्ण को बड़ा भला बुरा कहा है, नहीं समझ सकते थे। चोर क्या क्या नहीं, ठग धूर्त, मैंने कोई भाषा नहीं रखी रक्षुर कृष्ण के। और लोग कहते हैं कि यही सर्वोत्तम भागवत में, ये सर्वोत्तम सबसे अच्छी बात है, तो ये किसने कहा? ये कहा हमारे सुखदेव गोस्वामी इत्यादि जो रस के मर्मज्ञ हैं, या और ने कहा, या इसके बाद में हमारे जी गोस्वामी सनातन गोस्वामी और जितने भागवत के बड़े बड़े आज तक वक्ता हो गए हैं, सब लोगों ने इस चीज को माना। ओह, एक बड़ी विचित्र बात है, अभी तो तुम बड़े भोले भाले लगते हो, तुम भी उसी जगह का रहने वाले हो, बाई चांस वहां से कुछ फिसल करके इधर आ गए हो, किंतु हो तुम घड़ी के तत्रत्य तमसी, तत्रत्य तुम भी वहीं के हो ना? ग्यास्रसि अचिरा, तुम जानते भी हो किंतु तुमको भी अनुभूति नहीं है। क्यों नहीं अनुभूति? किसी कारण से फिसल गए थे, अब तुम वहीं पर जाना वाले हो और कुछ दिन में हमारे बतलाने की कुछ भी जरूरत नहीं होगी, इन सब चीजों को हमसे भी अच्छी तरह से तुम वहां पर जाकर के समझोगे। तब प्रसादतः उन्हीं के कृपा से, किनकी कृपा से? कृष्ण की कृपा से तुम इन सब विषयों को अच्छी तरह से समझोगे। गोप कुमार उपास, गोप कुमार जी कहने लगे, एवं निजस्त देव गोपाल चरणाब्जयो नितरं दर्शन उत्कंठा तद वाच्या में प्रवर्तता। गोप कुमार जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं याद है? उनको कह रहे हैं गोवर्धन वासी पित्र से कह रहे हैं, अपने एक तरह से शिष्य से कह रहे हैं। बोले जिस समय नारद जी की बातों को सुन करके अपने इष्ट गोपाल, अपने जो इष्ट देव जो गोपाल थे, हृदय में बड़ी भारी उत्कंठा हुई जी। कब देखी बड़ी भारी उत्कंठा की, उनके उत्कंठा जगाने के लिए ही कहा था। तत्सक्षात और तत्क्षणात, मैंने उसी समय में मुझे वो जो भाव विशेष माने प्रेम की परिपाक अवस्था जो है, उस भाव को पाने की तीव्र लालसा हुई। वैसा भाव मुझे कब आया? और अपने इष्ट देव को दर्शन की लालसा, तुम दो लालसा, एक क्या
भाव,
उस भाव को, और एक प्रभु के दर्शन की लालसा, दोनों साधक में दोनों चीजों को होना जरूरी है। पहले होगा तब साधन में, साधन में पहले जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने दिखलाया
भजन विषय,
भजन विषय में और भजनीय विषय में। अब ये जो भाव बतलाया ना, वो तादृश भाव प्रेम का परिपाक, वो साधन विषय है ना साध्य विषय है, क्या है वो? साध्य है, भजनीय है, भजन नहीं है। भजन तो इस जगत में ही होगा, उस जगत में भजन नहीं है, इसलिए ये दोनों भजनीय है। भजनीय में दो विभाग यहां पर बताया गया। प्रेम जितना उच्च कोटि का होगा, अपने इष्ट देव के दर्शन की उतनी ही तीव्र लालसा होगी, और भाव है ही नहीं है तो दर्शन की लालसा होगी कहां से? इसलिए ये दोनों भाव बड़ी तीव्र उत्कंठा इनकी हुई, और उभय के लालसा से महाशोक में, शोक रूपी समुद्र में मानो डूबने लगे। क्यों शोक? शायद अब ऐसा हमको प्रेम का परिपाक भी नहीं मिलेगा जैसे कि मैं अपने बाल गोपाल का दर्शन कर सकूंगा, और इतना जिस जो नारद जी के लिए संभव नहीं है, यद्यपि नारद जी ने कहा दैन्य के लिए, अपनी दीनता दिखलाने के लिए नारद जी में ये चीजें हैं, किंतु नारद जी ने दीनता बस कहा कि हमारे अंदर में वैसा प्रेम नहीं है, मैं ऐसा बतलाने के योग्य भी नहीं हूँ। गुरु भी ऐसे कह सकते हैं कि हमारे में राधा प्रेम कृष्ण प्रेम कहाँ, कह सकते हैं ऐसे गुरु गति हो। सचमुच में ऐसा प्रेम होना बड़ा कठिन है। करोड़ों लोगों कृष्ण भक्तों में भी कोई एक का ये कभी यदि संभव हो गया तो कभी हो गया। जगत में ये चीजें नहीं देखने को मिलती है। प्राभार्य महाप्रभु तक कहते हैं न प्रेम गंधोस्ती गरापि में हरऊ
कृंदामि
सौभाग्य धर्म प्रदाश। इसलिए बड़ा कठिन, किंतु हम लोगों का उद्देश्य वही होना चाहिए, उससे कम में हम नहीं कुछ लेंगे, चाहे भूख पर रह जाएंगे मर जाएंगे यही भाव रहेगा, भले ही हो किंतु रह जाएंगे भूखे, किंतु इससे कम नहीं लेंगे, किंतु हमारे खाने से ही हो जाएगा, एक पैसा का मुंह जो नहीं छोड़ सकता, पैसा गिरा हुआ है पांच पैसा नीचे से उठा करके ले लेंगे, कोई चीज कहीं गंदी चीज नहीं पड़ी है तो उसे उठा लेंगे। प्रतिष्ठा रूपी सबसे बड़ी प्रतिष्ठा की लालसा, और ऐसी गंदी चीज और कोई नहीं, जानते हुए भी हम नहीं छोड़ पाते हैं, जानते हैं कि सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, होता है अभी होता ही नहीं, यही चीजें नहीं छूट पाती हैं। यहाँ पर अगस्त ऋषि थे, वहां पर सांप नेवला बकरी बाघ सब एक साथ में, बिल्ली और चूहा सब एक साथ में मिलजुल कर करते हैं अगस्त ऋषि के आगे, और हम लोग कहाँ रहते हैं, बनती ही नहीं है किसी को। कहाँ ठीक है तो वहाँ पर कीर्तन करा दें, बांके का कीर्तन और ये सब का मस्जिद तैयार होकर के आए हैं ना, उदम उदम भी आ गया, अच्छा हो
गया,
वहाँ से गाड़ी उड़ी आई है। अब यही अब दोनों की लालसा, दो लालसा हुई, एक क्या ऐसे परिपाक युक्त प्रेम पाने की लालसा, और अपने प्रभु को देखने की उत्कट अभिलाषा लालसा, ये दोनों लालसा मिलकर के विरह समुद्र में उनको डुबाने लगा। क्यों? शोक, न तो मुझे ऐसा प्रेम होगा न प्रभु का दर्शन होगा, ऐसे प्रेम के बिना वो प्रभु का दर्शन नहीं होगा। जब उनका मुख सूख गया और जबकि अत्यंत शोक करने लगे तो नारद जी को फिर दया आ गई। विषय को वहीं पर चुपचाप बंद करना चाहते कि फिर उनमें दया उमड़ी शिष्य वात्सल्य और सोचा जी इसको कुछ उपाय बतलाना चाहिए जी जैसे वहां जाए। उन्होंने कहा यद्यपि एतन महागोप्यम यद्यपि महागोपनीय है युज्यते नात्र जल्पितम वैकुंठ जगत में इसका वर्णन नहीं करना चाहिए महिमा वैकुंठ में ये बात नहीं कहनी चाहिए जहां पर मथुरा के सब पंडे और ब्राह्मण लोग एकत्रित हों वहां पर ये कहा जाए जे मथुरापुरी से कोटि गुण श्रेष्ठ वृंदावन है तो क्या करेंगे लठिया चला देंगे। वहां कहो कि वृंदावन का नाम मतलब कहो जो मथुरापुरी धन्य है त्रिलोक में
नारी
है मथुरा का महात्मा वर्ण वहां पर वृंदावन की महिमा मत करो। और वृंदावन में जाकर के यदि ये कहो कि वृंदावन नंदगांव बरसाना इत्यादि की जितनी महिमा है गोवर्धन की महिमा के सामने तनिक कुछ नहीं है तो हो गया वृंदावन वाले जितने हैं वो बिगड़ करके लाल हो जाएंगे। इसलिए समझ बुझ करके जानते हुए भी वैसे ही बोलना चाहिए गबर जानने पर भी उसका सदुप ऐसा करना चाहिए। हम तो जानते ही हैं